ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक्स खेलों से लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शालीमार बाग स्थित मुगलकालीन शीश महल में जीर्णोद्वार कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलों का बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है, जिससे वे प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में पेरिस पैरालंपिक्स खेलों से लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धाओं के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे देश का गौरव बढ़ा है।
हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों देश का गौरव बढ़ा रहा है। पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल मिले थे, आज हम 27 तक पहुंचे हैं। हमारा पैरालंपिक्स खिलाड़ियों का हौसला हाई पर है, उत्साह से खेल रहे हैं। देश भी चेयर फॉर भारत करके हमारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ पैरालंपिक्स मेडल विनर प्लेयर भारत आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूं।
श्री मांडविया ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 12 कांस्य पदक जीतकर 27 पदक हासिल किए हैं और इतिहास रचा है। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने कहा कि इस ओलंपिक की यात्रा मुश्किल थी और इस बार ये पिछली बार से ज्यादा कठिन थी।
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी खुद से थी, लोगों की मुझसे थी। देन आई जस्ट यू नो रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी ऑल्सो, तो वो सब के बाद में यहाँ पे पहुंचना एंड गोल्ड लेना, इट वॉज सच अ नाइस फीलिंग। और काफी अच्छा एनवायरमेंट है, टीम का काफी सपोर्ट है। मैं मेरे पर्सनल कोच, पर्सनल फिजियो के साथ गई थी। इट वॉज लाइक अ टीम एफर्ट जिसने ये पॉसिबल करवा पाया है।
कांस्य पदक जीतने वाली अन्य खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने कहा कि ओलंपिक यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक पदक के पीछे पूरी टीम रही। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष की यात्रा में टीम ने अच्छा और बुरा समय देखा।
सेटिस्फेक्शन तो बहुत है, क्योंकि 8 साल के बाद मिला है एंड जर्नी में मैं अकेली नहीं हूँ, सारे लोग हैं मेरे साथ। मेरे कोच हैं सुभाष राणा, नोटियाल सर, पूरी पैरा टीम है, साय है, सेम विद ओजीक्यू एंड एवरीवन इज देयर। तो जर्नी में हम अकेले नहीं होते, एवरीवन इज देयर, एफर्ट्स लगते हैं। तो 8 साल की जर्नी में हर्डल्स देखे तो उन्हीं के साथ देखे हैं और जीत भी देखी तो उन्हीं के साथ देखी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट F57 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर होकाटो होटाजे सेमा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं, इससे उन्हें सीखने में मदद और देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को प्रोत्साहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को देखो अपना देश, लोगों की पसंद प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने के लिए कहा, ताकि वे इसमें भाग ले सकें।
हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय कर भी हमारे राज्य में ये नंबर वन पर चीज है जो देखने जैसी है, योजनाबद्ध तरीके से वहां जाए, रात्रि को मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा कि भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व के बारे में भी चर्चा की। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लॉजिस्टिक्स और उन्नत कौशल में भागीदारी के लिए एक निजी कंपनी खाद्य एग्रीगेटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के मद्देनजर व्यवसाय के लिए उन्नत कौशल आवश्यक है। लॉजिस्टिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और संपर्क सुविधा में सुधार तथा वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि से देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आधार पर कल तक दाखिले लिए जा सकते हैं और फीस का भुगतान इस महीने की 10 तारीख तक किया जा सकेगा। छात्र प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ लिस्ट से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सचदेवा ने कहा कि हर वर्ष भाजपा ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि मानसून के बाद प्याज की कमी को पूरा करने के लिए एक बैकअप योजना तैयार की जाए, परंतु दिल्ली सरकार ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण लोगों को महंगा प्याज खरीदना पड़ रहा है। श्री सचदेवा ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए अपनी एजेंसियों जैसे नेफेड के माध्यम से प्याज का स्टॉक तैयार किया और आज वैन के जरिए 35 रूपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करने का आरोप भी लगाया। शकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गणी सांपला किलोई सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान को होडल से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। राज्य में पूर्व मंत्री गीता भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ेंगी। मौजूदा विधायक चिरंजीव राव को फिर से रेवाड़ी से टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी होने के साथ ही राजनीतिक विद्रोह शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता राजेश जून ने टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा अपने समर्थकों के साथ एक बैठक में की। श्री राजेश जून ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने वायदा करने के बावजूद टिकट नहीं देकर उनके साथ धोखा किया है। कांग्रेस नेता रामकिशन फौजी ने अपना टिकट कटने की आशंका को देखते हुए कल 8 सितंबर को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। हरियाणा में गठबंधन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में मिशन और विजन की कमी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन की अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं और दिल्ली में वे पहले से एक साथ थे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच अनिश्चितता है जो उनकी हताशा को दर्शाता है।
अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है और ये दिखाता है इतना डेस्परेशन है जो पार्टियां एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है उनको भी हरियाणा में साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब अकेले लड़ने में उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा की जनता उनको समर्थन देगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए काउंसलिंग करवाएगी। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में 20 स्कूलों के 20,000 से अधिक बच्चों को काउंसलिंग दी गई है। पायलट फेज के अनुभवों को जानने और फीडबैक के लिए शिक्षा मंत्री आतिशी ने इन विद्यालयों में तैनात मनोवैज्ञानिक व ईवीजीसी काउंसलर से चर्चा की। इस अवसर पर आतिशी ने कहा कि तन के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। एक रिपोर्ट।
गणेश चतुर्थी के दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उत्सव का समापन गणेश विसर्जन के भव्य आयोजन के साथ होता है, जहां भगवान गणेश की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि ये त्यौहार देश के कई हिस्सों में सामूहिक उल्लास और सामाजिक ऊर्जा का एक सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान गणेश को शुभ और विघ्नहर्ता माना जाता है। उन्होंने भगवान से सभी को विपत्तियों से बचाने और समृद्धि फैलाने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्लीवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि विघ्नहर्ता विनायक का शुभ आगमन लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और मंगलमूर्ति सबका कल्याण करें। दिल्ली के उपराज्यपाल ने उत्तरी दिल्ली में शालीमार बाग स्थित मुगलकालीन शीश महल में जीर्णोद्वार कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य में लगभग 30 कारीगर स्मारक और ऐतिहासिक मुगल उद्यानों की भव्यता, रंग और नक्काशी को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि इसके अतिरिक्त जल निकाय, फव्वारे और चारबाग उद्यान को बहाल करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के रफी मार्ग स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में कल से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी ह्यूज का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में लगभग 40 प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा 100 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक इस प्रदर्शनी को देखने जा सकते हैं। प्रदर्शनी का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के रिटर्निंग अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने अगले महीने की 5 तारीख को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग दस्ता और स्टैटिक निगरानी टीमों द्वारा लगे नाकों का औचक निरीक्षण किया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों से लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में बढ़ रही प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शालीमार बाग स्थित मुगलकालीन शीश महल में जीर्णोद्वार कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।